ओम शांति, ओम शांति। निराकार परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, बाबा, हमारी इस संगम युग पर कितनी सुंदर पालना कर रहे हैं। माता पिता के रूप से, शिक्षक के रूप से और सतगुरु के रूप से, माँ बाप के रूप से जब से हम बाबा के बने हैं, तब से जब से हमने दिल से कहा मेरा बाबा, सभी ने कहा, अभी भी जरा एक बारी कह दो, मेरा बाबा। किसका बाबा? मेरा बाबा। तो सभी को उस पालना का बहुत सुंदर अनुभव है। और अभी जो हम परसों बाबा से मिले, उसमें भी बाबा ने कितनी सुंदर अव्यक्त पालना की बातें कही हैं कि वतन में भिन्न भिन्न तरह से सजा हुआ है, जैसे सब बच्चों के दिल के उद्गार क्या थे, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। साकार की पालना, अव्यक्त की पालना, और अव्यक्त में भी अभी बहुत सूक्ष्म पालना, जो बाबा ने कहा कि अगर बाह्य रूप से कहेंगे मेरा बाबा तो घमासान हो जाएगा, लेकिन सबके दिल में क्या चल रहा है, बाबा तक आवाज पहुंच रहा है, दिल का आवाज दिलाराम बाप तक पहुंच रहा है, वतन तक पहुंचा। तो बाबा हमारी कितनी सुंदर पालना कर रहे हैं, ऐसी पालना ना कोई लौकिक माँ बाप, ना कोई गुरु महात्मा कर सकते हैं, ना कोई टीचर कर सकता है दुनिया में, क्योंकि बाबा हमें स्वयं टीचर बनकर के इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने जीवन को, चाहे हम लौकिक में रहते हैं, चाहे हम समर्पित रूप से अलौकिक में रहते हैं, लेकिन हमारा टीचर बहुत स्ट्रांग है, ज्ञान भी बहुत गहराई से एक एक बात समझा करके हमें दे रहा है, और बीच बीच में इस पढ़ाई के कुछ कुछ हम सबके जीवन में यूनिट टेस्ट भी आते हैं, आते हैं सबके जीवन में, आते हैं, हाथ खड़ा करो जरा, आते हैं सबके जीवन में, आते हैं। और अगर हम इन यूनिट टेस्ट को समय प्रति समय आए हुए पेपरों को बहुत अच्छी तरह से पास करते जाते हैं, तो इन पेपरों के भी हमारे नंबर फाइनल में लगते हैं। जिसको बाबा कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास, क्योंकि विषय है अचानक और एवर रेडी। अचानक के किस किस तरह के पेपर आ सकते हैं, तन का, मन का, धन का, जन का। तन में क्या क्या पेपर आ सकते हैं? तन की बीमारी के रूप में, क्योंकि जब भी हमें कोई बीमारी डिक्लेयर होती है तो हमारा मन जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आज किसी को कह दिया जाए कि आज आपको ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ और आज से आपको दवाई लेनी है, कहते नहीं, मेरे को तो कभी था ही नहीं। आपकी शुगर बढ़ी हुई है और आपको ये दवाई लेनी ही पड़े, नहीं नहीं, हम जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करते। या आपके शरीर में कहीं गांठ हो गई है, कहीं कुछ हो गया है, तो भी हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करता, तो उस समय कई तरह के संकल्प विकल्प चलने लगते हैं। मन में सब तरह के पेपरों का जमावड़ा होता है। अभी अभी जैसे धन का ही पेपर एक आया, कौन सा? नोटबंदी, हाँ? आया ना एक पेपर। तो भले हम पीएम के ऑर्डर अनुसार करना ही है, लेकिन बहुत समय तक बहुत लोगों के अंदर क्या चलता रहा, क्या चलता रहा? संकल्प। कुछ तो पहले पता चल जाता, कुछ तो हो जाता, इतनी लंबी लाइनें लगी हैं, इतना बैंक में ये, इतना, इतने सारे थॉट्स। चले आप लोगों के, चले किस किस के, चले चले नहीं चले चले देखो, हाँ, कोई कोई लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, कोई अभी नहीं करेंगे, पर सब के किसी ना किसी रूप से चले ही हैं। और इसी प्रकार से जन का, अचानक कुछ खबर मिलती है, जो हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, संबंधी हैं, संपर्क वाले हैं, उनका कुछ अचानक समाचार मिलता है, तो भी क्या होता है, हमारे मन में कई कई तरह के विचार। एक घर का मेंबर कह के जाए कि मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा, और किसी कारणवश अगर उसे 4, 5, 6 घंटे लग जाएं और कम्युनिकेशन भी ना हो पा रहा हो, तो मन में किस तरह के विचार चलने लगते हैं। ये तो अभी वो समय है जब बिल्कुल सब नॉर्मल सिचुएशंस चल रही हैं। लेकिन बाबा ने बताया हुआ है कि बहुत सारे पेपर, तरह तरह के पेपर अभी आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। तो उसके लिए हमें अभी से ही क्या तैयारी करनी है? क्योंकि अभी इस नॉर्मल सिचुएशन में ही हमारा मन स्थिर नहीं हो पा रहा, तो जब चारों तरफ से प्रकृति के पेपर, मनुष्य आत्माओं द्वारा कई पेपर, कई तरह के पेपर, संबंधों द्वारा कई तरह के पेपर, इविल सोल्स द्वारा कई तरह के पेपर, इविल संस्कारों द्वारा कई तरह के पेपर, आवश्यक चीजें ना मिलने के कारण पेपर, और सबसे बड़ा पेपर तो उस दिन आएगा जब लाइट फेल हो जाएगी और सर्वर डाउन हो जाएंगे। कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, कौन कहां है, क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। और कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई टेलीफोन काम नहीं कर रहा है, कोई नेट नहीं काम कर रहा है, कोई मोबाइल नहीं काम कर रहा है, आज हम कहते हैं कि इस मोबाइल के बगैर, नेट के बगैर हम रह नहीं सकते हैं। और जिस दिन ये सारी परिस्थिति आएगी, बैंक में कुछ काम नहीं हो पा रहा, कहीं पे कुछ काम नहीं हो पा रहा, क्या तब मेरा मन स्थिर होगा? उसी के लिए ही बाबा हमें इतने समय से अचानक और एवर रेडी का लेसन पक्का करा रहे हैं। और उसके लिए भी बाबा ये कहते बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अचानक में हम एकदम से पेपर आए और एकदम से हम पास हो जाएं, क्योंकि हमारा मन बुद्धि जहां पर लगा हुआ है, बहुत समय से जिस चीज का अभ्यास कर रहा है, उस समय भी अचानक वहां ही चला जाता है। जैसे वो एक बारी सुनाते हैं ना कि एक किसान था और वो खेती करता था, हल चलाता था, तो वो पहले बैलगाड़ी से सब काम करते थे। तो दो बैल थे और पीछे बैलगाड़ी थी उसकी, तो रोज बैलों को वो लेकर के, बैलगाड़ी को लेकर के खेतों पे जाता था, रोजाना का रूटीन था। लेकिन एक दिन उसी रोड से ही उसको मार्केट जाना था कुछ जरूरी चीजें खरीदने के लिए, पर रोड वही जाती थी और इधर को उनके बैल चले जाते थे क्योंकि उसका खेत इधर को था। तो जैसे ही वो चला, उसे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश भी की कि बैल इधर ना घूमे, लेकिन एक सेकंड में बैल उसी रास्ते पे चल पड़े। क्यों? क्योंकि बैलों को रोज की आदत थी। तो हमारे भी मन बुद्धि को अगर आदत है, देह संबंध पदार्थ सारा दिन इसी में ही हम लगे रहते हैं, तो जब अचानक का पेपर आता है तब भी हमारी बुद्धि वही ऑटोमेटिकली चली जाती है, ना चाहते हुए भी वहां ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो इसीलिए इसका बहुत अभी से हमें अभ्यास करना है। विशेष क्या अभ्यास करना है? एक तो हमें अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है, क्योंकि जब हम बाह्य मुक्ता में आते हैं, बाह्य मुक्ता में रहते हैं, तो वो हम बाबा के पास जाने का अभ्यास हमारा कम हो जाता है। तो अंतर्मुखता का अभ्यास हो और बार 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 अपने घर जाने का अभ्यास हो। कहां जाने का? कहां जाने का? परम धाम में। बाबा को देखाओ, अपने घर को देखाओ, कैसा है हमारा घर? लाल प्रकाश का धाम। कितना बड़ा है हमारा घर? क्योंकि अभी जाना है ना, जहाँ जाना होता है तो मन बुद्धि कहाँ लगा रहता है। अभी भी आप माउंट आबू आए, बाबा के पास आए, हाँ, 4 महीने पहले से आपकी रिजर्वेशन हो गई होगी, और मैं समझती हूँ 5 महीने से आपके मन में क्या होगा, जाना है जाना है। हो सकता है आपको बाबा दिखाई देता हो यहाँ बैठा हुआ, बाबा डायमंड हॉल में आए हैं, बाबा मुरली चला रहे हैं, ऐसे मैं बाबा के सामने बैठी हूँ, बैठा हूँ, ऐसे ऐसे बाबा मिलन मना रहे हैं। तो इन 4-5 मास में हमारा कितनी बारी बुद्धि योग गया होगा, कितनी बारी, हाँ। और जैसे जैसे दिन समीप आते गए, वैसे वैसे हमें और नजदीक ऐसे लगे कि बस अभी गए कि गए, अभी वहीं बैठे हैं जैसे कि। तो ऐसे ही हमारा भी घर जाने का समय समीप है, दूर है, समीप है, हाँ, समीप है। तो हमें और इसमें अभ्यास करना है, यही बहुत काल का अभ्यास, इस शरीर से न्यारे होने का अभ्यास, अव्यक्त बनने का अभ्यास, व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास। क्योंकि अभी तो हमें सब कुछ मिलता है, योग लगाना है, लाल बत्ती भी हो जाती है, म्यूजिक भी चलता है, गीत भी बजते हैं, कभी कमेंट्री भी मिलती है, सब कुछ मिल, लेकिन लास्ट में अगर कुछ नहीं मिलेगा तो क्या हम इधर उधर ही देखते बैठे रहेंगे? हमने अभी से ही अपने मन के राजा बनना है। क्या सीख रहे हैं? राजयोग, प्रजा योग। आज बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहेंगे, प्रजा को तो नहीं कहेंगे ना। तो हम क्या सीख रहे हैं, प्रजा योग या राजयोग? राजयोग माना क्या, किसका राजा? कोई प्रजा है क्या यहाँ पे? अपने इन कर्म इंद्रियां और कर्म इंद्रियों से भी ऊपर जो है वो है मन, और मन के ही हमें राजा बनना है। और अभी से अगर हमारा ये अभ्यास नहीं होगा राजा बनने का, तो अंत वेले भी अचानक के पेपर में भी हम बन नहीं सकेंगे। क्योंकि राजा दूर से ही दिख जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एक बारी एक असली राजा कौन है ये परखने के लिए उसमें एक राजा था और बाकी 7 लोग राजा जैसी ड्रेस पहने हुए थे, क्योंकि 8 लोग वैसे ही शक्ल सूरत के थे, हाइट वेट भी वैसा ही, छांट छांट के राज्य से निकाले और एक जैसी 8 ड्रेसेस बनाई, एक जैसे उनके मुकुट, एक जैसा पहनावा, सब कुछ एक जैसा। तो पहचानना ये था कि इसमें 8ों में असली राजा कौन है। तो सब आते गए, बताते गए, बताते गए, नहीं ठीक बता पाए। एक व्यक्ति ने ठीक पहचान लिया, तो उससे पूछा गया, तुमने कैसे पहचाना? तो कहा, जो असली राजा था ना, वो एकदम एकाग्र चित्त होकर के बैठा था, और जो बाकी 7 बने हुए थे उनकी वृत्ति, उनकी दृष्टि चंचल थी। कभी वो इधर देखते थे, कभी वो इधर देखते थे। तो एकदम से पहचाना कि जो असली राजा है वो असली राजा है। उसकी जरा भी दृष्टि वृत्ति हिल नहीं रही है। तो हम अपने आप से पूछें, क्या मैं असली राजा हूं या अभी तक भी मेरी दृष्टि या कहो वृत्ति। इसीलिए सत्युग में हमारी एनर्जी जल्दी डिप्लीट नहीं होती है, जल्दी डाउन नहीं होती है। सत्युग की कलाएं कितनी देर में कम होती हैं? क्यों? क्योंकि हमारी वहां पर जितना सोचना है उतना ही सोचते हैं, जितना देखना है उतना ही देखते हैं, जितना सुनना है उतना ही सुनते हैं, और जितना बोलना है उतना ही बोलते हैं। और आज हमारी एनर्जी जल्दी कंज्यूम क्यों होती है? जहां बोलना नहीं चाहिए वहां भी सलाह देने लग पड़ते हैं, जहां देखना नहीं चाहिए वहां भी देखने लग पड़ते हैं, जो सुनना नहीं चाहिए उसको भी बड़ा इंटरेस्ट ले ले करके सुनने खड़े हो जाते हैं। तो क्या होता है? हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है, खत्म होती है। तो ये अभ्यास अभी ही हमें संगम युग पर ही करना है कि मुझे कितना सोचना है, कितना नहीं सोचना है, क्या सुनना है, कितना सुनना है, क्या नहीं सुनना है। बाबा ने ज्ञान तो दिया है ना। क्या बोलना है, कितना बोलना है, उतना ही हमें बोलना है। तो ये बहुत काल का हमारा अभ्यास अटेंशन हमें फाइनल पेपर में पास कराएगा, पास विद ऑनर कराएगा। क्योंकि अभी भी अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो उतने बहुत सारे पेपरों से भी हम मुक्त हो जाते हैं। मान लो कोई कहता है ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये मुझे उतना रिगार्ड नहीं देते, इनको पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं कितनी सीनियर हूं, मैं कितना ये हूं, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं कितना, ये रिस्पेक्ट मांगनी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं आप अपने स्वमान में टिको, क्योंकि संगम युग पर बाबा ने अपने सारे स्वमान, अपने सारे टाइटल हम बच्चों को दिए हैं। कोई भी ऐसा टाइटल नहीं होगा जो बाबा ने हमें स्वमान के रूप में अपना टाइटल ना दिया। है कोई ऐसा टाइटल? तो बाबा कहते आप अपने स्वमान में स्थित रहो तो ऑटोमेटिकली आपको सम्मान मिलेगा। पर हम स्वमान की सीट से नीचे आ जाते हैं, अपने आप को ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग समझने लगते हैं और लोगों से एक्सपेक्टेशन, और किन से एक्सपेक्टेशन रखते हैं? जो खुद खाली है। तो हम अब अपने स्वमान में जितना स्थित होते हैं उतना ही सर्व का मान ऑटोमेटिकली प्राप्त होता जाता है, क्योंकि ये हमारा अंतिम शरीर भी है। तो इसी शरीर के द्वारा ही हमने सारी प्रारब्ध भी बनानी है। कोई और शरीर मिलना है क्या? इसीलिए इस शरीर के हर अंग को भी भाग्यशाली समझो। ये आंखें कितनी भाग्यशाली हैं, हमें भले बहुत सुंदर सुंदर शरीर मिले होंगे, देवताई शरीर मिले हर जन्म में बहुत अच्छे, लेकिन ये शरीर और इसका एक एक अंग बड़ा भाग्यशाली है। ये आंखें कितनी भाग्यशाली हैं जो इन आंखों से हम भगवान को इस धरा पर उतरते हुए देखते हैं। ये कान कितने भाग्यशाली हैं, डायरेक्ट भगवान की वाणी सुनते हैं। ये मुख भगवान की बातों का वर्णन करे, ये हाथ भगवान के कार्य में लगे रहे, ये जन्म ये शरीर बहुत बहुत भाग्यशाली है। इसीलिए अपने भाग्य के ही गुण गाते रहो। अगर हम वो पुरुषार्थ नहीं करते, वो धारणाएं नहीं करते, वो दैवी गुण नहीं धारण करते हैं, स्वमान में नहीं टिकते हैं, तो उसको भी आज बाबा ने क्या टाइटल दे दिया, कम भक्त। सुना आज की मुरली में, धारण नहीं करते, सेवा नहीं करते। तो हम तो कितने भाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली है। रोज सुबह उठते ही अपने आप को एक तिलक दे दो। जैसे ब्राह्मण होता है ना, तो ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण रोज उठते ही अपने आप को तिलक देता है कि मैं ब्राह्मण हूं। देखा, ब्राह्मण सबसे पहले अपने को तिलक लगाता है, तो मैं ब्राह्मण आत्मा सबसे पहले अपने आप को तिलक लगाऊं। वाह मेरा भाग्य वाह। जो भगवान मुझे उठाता है और मैं आंख खोलते ही भगवान के दर्शन करती हूँ, बाबा के दर्शन करती हूँ, और मैं तो क्या सोचती हूँ, जैसे हमारे सेंटर पे बाबा का कमरा नीचे है, रेजिडेंस ऊपर है, तो उठते ही 3:30 बजे क्या आता है, बाबा मेरा इंतजार कर रहा है कमरे में। क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। कभी सर्दी होती है बहुत, कभी कुछ परिस्थिति होती है, या लेट से सोए हैं, या कुछ भी बात है, लेकिन मुझे एक ही बात आती है, नहीं नहीं बाबा मेरा इंतजार कर रहा है। कभी सुस्ती का एक संकल्प आ जाए, नहीं बाबा भगवान मेरा इंतजार कर रहा है। किसी का कोई VIP इंतजार करे तो कैसा लगे, अरे वो, और मेरा इंतजार कौन कर रहा है, बाबा खुद बाहें फैला करके बैठा है। तो बाबा इतनी सुंदर पालना कर रहा है, इतने अपने टाइटल हमें दे रहा है, बाबा कहते पर इसकी संभाल आपको करनी है, इसमें टिकना आपको है। तो इसीलिए अचानक के पेपर के लिए हमें अभी से ही अशरीरी लाइट हाउस माइट हाउस बनने का अभ्यास करना है। क्योंकि अंत काल में किस किस तरह की आत्माएं आपके सामने आएंगी, कैसे कैसे विचारों वाली आएंगी, कैसी कैसी वृत्तियों वाली आएंगी, और हमें अगर बहुत समय का अभ्यास है, मैं आत्मा लाइट और माइट स्वरूप हूं, तो बाबा कहते हैं आपका सिर्फ क्या दिखाई देगा, लाइट का शरीर उन्हीं को दिखाए, लाइट थी कोई माइट थी। तो अभी हमें ये अभ्यास बहुत काल का करना है। चलो अभी तक किया है या नहीं किया है, जितना भी किया है, लेकिन आज से अभी हम बाबा से मिलन मनाने आए, क्लासेस हुई आप सबकी, इतनी आपकी झोलियां भरपूर हुई ज्ञान से, लेकिन अभी हमें ये एक बात गांठ बांध करके ले जानी है कि मुझे अभी इस पुरुषार्थ में डट जाना है। ऐसे नहीं कि बाबा से मिले, बहुत अच्छा लगा, बाबा ने हाँ ये मिलन का अनुभव कराया, ये तो ठीक है, लेकिन मेरी स्टडी तो निरंतर है ना। अभी इस अभ्यास को मैं और ज्यादा से ज्यादा परम धाम जाने का, ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त मिलन मनाने का, सूक्ष्म वतन में जाने का, बाबा से अव्यक्त पालना लेने का, साकार की पालना, अव्यक्त की पालना, और अव्यक्त में भी अब और सूक्ष्म पालना बाबा हमारी कर रहे हैं। और ऐसी अगर हम पुरुषार्थ की विधि को अपनाते हैं तो अभी समय को वरदान है, जो आप सोचते जाएंगे वो आपको प्राप्त होता जाएगा, जो आप सोचते जाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने संकल्पों की स्पीड को भी अभी कम करना है। व्यर्थ तो बाबा कहता है खत्म करना है, नेगेटिव खत्म करना है, क्योंकि समय अनुसार। एक दिन दादी जानकी जी से बात हो रही थी, कहा समय अनुसार अभी हमारे जीरो वेस्ट थॉट्स आ जाने चाहिए, पर अभी तो कभी कभी नेगेटिव भी चल पड़ते हैं, कभी किसी से कोई बात हो जाती है तो और कोई तरह के विचार भी चल पड़ते हैं, और बाबा तो यहां तक चाहते हैं कि शुद्ध संकल्पों की भी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे थॉट्स अब मिनिमाइज होते जाए, क्योंकि जितने ये थॉट्स कम होते जाएंगे उतने कंसंट्रेटेड होते जाएंगे, पावरफुल होते जाएंगे। बहुत बहुत विचार होते हैं तो बिखर जाते हैं, उसकी पावर नहीं रहती उतनी। तो इसीलिए विचार कौन से चलाने हैं, कितने चलाने हैं, क्योंकि ये हमारा पुरुषार्थ अंत का होगा, तभी हम घर जाएंगे और वहां से जब हम आएंगे पहले जन्म में तो हमारे बहुत, क्योंकि बाबा कहते सत्युग में वाणी भी बहुत कम होगी, संकल्प से ही सब कार्य होंगे, तो उसका भी हमें अभी से ही अभ्यास कि हमने ये सोचा और ये ऑटोमेटिकली हो गया, बोलना ही नहीं पड़ा किसी को। तो इसीलिए हम उस पेपर में, फाइनल पेपर में तभी पास हो सकेंगे जब हम अभी से इतना पावरफुल अभ्यास करेंगे, क्योंकि जैसे इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में कोई ऑफिसर ये नहीं पूछता है इंटरव्यू लेने वाला कि आपने अब तक कितनी किताबें पढ़ी हैं? पूछता है वो जो क्वेश्चन करता है उसका उसको एक्यूरेट आंसर मिल जाता है तो वो पोस्ट के लिए फिक्स हो जाता है। और इतने लंबे समय की पढ़ाई और इंटरव्यू कितनी देर का, और उस इंटरव्यू के आधार पर उसका भविष्य निर्धारित हो जाता है। तो सिमिलरली हमारा भी बहुत काल का अभ्यास वो अंत के समय जो बाबा ने हमें पेपर दिया हुआ है, कौन सा पेपर होना है हमारा? नष्टो मोहा, स्मृति लब्धा, गत संदेह। तो हमारे संशय संदेह कोई भी तरह का, किसी भी तरह का एक थॉट भी ना रहे। और ये मोह का पेपर बहुत, जिसको बाबा कहते हैं जितना छोटा उतना खोटा, क्योंकि ऊपर ऊपर से हमें कभी कभी वैराग आता है परिस्थिति प्रमाण, तो हम सोच लेते हैं कि नहीं मुझे तो कोई मोह नहीं है, ना मुझे पैसे से मोह है, ना मुझे कोई बाल बच्चों से मोह है, ना मुझे कोई अपने शरीर से मोह है, ना हमें कोई पोस्ट पोजीशन। लेकिन ये पेपर जब आता है तब पता चलता है। हमारे पास एक माता आई, दीदी मुझे किसी से मोह वो नहीं है, अब सब देख लिया है, कोई अपना नहीं है, मुझे किसी से दीदी मोह नहीं है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़े दिन में नजारा दिख गया। उसके बेटे के ऊपर कोई परिस्थिति आई तो पुलिस केस हो गया, पुलिस घर में आई बस ये गंगा जमुना, रोती हुई आई हमारे पास। मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि मेरे को जरा भी मोह नहीं है, ये क्या है? नहीं दीदी अब मुझे समझ आई है मोह क्या होता है। कहना बड़ा आसान है लेकिन इसके लिए बहुत समय का अभ्यास, आत्मा देखने का, आत्मा समझने का, विदेही स्थिति का, कर्मातीत स्थिति का, अशरीरीपन का, बहुत समय का अभ्यास, बीज रूप स्थिति का, बहुत समय का अभ्यास ही हमें विजयी बना सकता है। अन्यथा कि वो अचानक के पेपर में एक बाबा में बुद्धि टिक जाए, कहीं इधर उधर एक भी संकल्प हमारा ना चले, इसके लिए ही बहुत काल का अभ्यास। तो अभ्यास ये भी नहीं कि कोई हम बैठ करके ही अभ्यास करेंगे। बाबा ने हमें ऐसा अभ्यास सिखाया है, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते, क्या करो, सिर्फ अटेंशन। क्योंकि हो सकता है हमें समय इकट्ठा ना भी मिलता हो, यहाँ तो हम बहुत लकी हैं, हमें बहुत समय मिल रहा है योग लगाने का, क्लासेस करने का, क्योंकि सब बातों से निवृत्त हैं। इसीलिए यहाँ भी बाबा हमें साकार मुरलियों में भी क्या कहते हैं, मधुबन में आते हो तो जितना ज्यादा से ज्यादा इस अभ्यास को करेंगे तो ये अभ्यास, ये पुरुषार्थ हमें वहां बहुत मदद करता है, क्योंकि यहाँ हम अच्छे संग में बैठे हैं, अच्छे एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, अच्छे हम पावरफुल दादियों की वाइब्रेशंस में बैठे हैं, बड़े बड़े बहन भाइयों के इतने सालों की तपस्या वालों के संग में बैठे हैं। वहां पर तो सारे घर में मान लो एक ही व्यक्ति चलता है, उसमें भी किसी को व्यापार का, किसी को जॉब का, किसी को कितने सारे थॉट्स, घर परिवार के, गृहस्थी के। और यहां तो हमें कितना सुंदर मौका है, कितना सुंदर सुअवसर मिला है कि हम अपने मन को यहां तो ट्रेनिंग दे सकते हैं, पर यहां पर भी अगर हम फोन पे और इन सब चीजों पे लगे रहेंगे तो ये मौका भी चला जाएगा मन को ट्रेनिंग देने का। तो इसीलिए ये अटेंशन रखना है, मैं बाबा के घर आई हूं। अरे किसी के ऑफिस में ट्रेनिंग होती है, उनको कहते हैं मोबाइल नहीं यूज करना, सिर्फ रात को यूज करना है आपको, ये जरूरी है, अर्जेंट है। तो हम यहाँ कितनी कितनी देर मोबाइल पे ही लगे, तो हम मन को ट्रेनिंग कब देंगे? और है सारी मन की बात। तो इसीलिए क्या करना है, ये अपने को डिसाइड करना है। क्योंकि मेरा बाबा से ये संबंध निरंतर बना रहे, योग माना क्या, निरंतर। जब मेरी वो स्थिति होगी निरंतर वाली अशरीरीपन की, तो हमारे सामने भी जो आएंगे वो भी क्या अनुभव करेंगे, वो स्थिति का अनुभव कर लेंगे। जैसे अभी भी हम दादियों के पास जाते हैं, हा? तो क्या अनुभव होता है। जैसे साकार बाबा के पास, कई लोग कितनी सारी सोच सोच से बातें जाते थे, बाबा के पास जाएंगे ये पूछेंगे, बाबा के पास जाएंगे ये पूछेंगे, लेकिन वहां जाते ही बाबा का ऑरा, बाबा की वाइब्रेशन इतनी पावरफुल होती थी कि सब कुछ भूल जाते थे। बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी के साथ मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा कि दादी के समीप जाते ही वो सब बातें भूल जाते थे। अभी भी हमारी दादियां, तो सिर्फ दादियों ने ये स्थिति या हमने भी बनानी है ये स्थिति, क्या सोचा है? हम सब एक ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, तो हमको भी इन दादियों जैसा, बाबा जैसा बनना है ना। क्योंकि जितनी हमारी शांतमय स्थिति होगी, कहीं भी अशांति का वातावरण भी होगा, तो आपके एक संकल्प एक दृष्टि से वहां भी शांति हो जाएगी। प्रकृति शांत हो जाएगी, जीव जंतु शांत हो जाएंगे, पर उसके लिए अभी से क्या करना, क्या करना, दृढ़ संकल्प करना। कि मुझे, चलो बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है, बीच बीच में समय मिलता है, एक मिनट मिला, एक सेकंड मिला, दो मिनट मिले, पांच मिनट मिले, वो मेरे अपने है ना, क्योंकि संगम युग का समय जो बाबा कहते हैं एक एक मिनट हीरे तुल्य है, जब हम इस समय को अच्छी तरह से पहचानेंगे तभी हम इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो पार्ट प्ले कर सकेंगे, नहीं तो ऑर्डिनरी बन जाएंगे। और जितने जितने हमारे मन के संकल्प एकाग्र होते जाएंगे उतने हमारे वाणी भी ऑटोमेटिकली, हर कर्म इंद्रिय ऑटोमेटिकली शांत होती जाएगी, क्योंकि मन ही तो महामंत्री है। और बीच बीच में ये अभ्यास परम धाम में जाके करके आओ, ये शरीर, मैं इसको डब्बा कहती हूँ कभी कभी, ये डब्बा यहाँ ही छोड़ के जाना है, साथ जाना है, साथ जाना है किसी का, नहीं जाना है तो इसका अभ्यास करना है। बस ये मुझे पुरुषार्थ करने के लिए, कमाई करने के लिए मिला हुआ है, बाकी मैं आत्मा तो परम धाम में कैसी थी, बाबा के सामने चमकती हुई मणि, अभी भी अनुभव करो, परम धाम में बाबा के सामने मैं आत्मा चमकती हुई मणि, और मेरी चमक वहां पर भी सब आत्माओं से विशेष है, जैसे ही आप ये विजुलाइज करते जाएंगे तो आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। तो बार बार अपनी आत्मा को वहां देखो, अपने घर में देखो, बाबा के पास देखो, बाबा से शक्ति ले रही हूं अनुभव करो, सूक्ष्म वतन में बाबा से मिलन मना रही हूं, बाबा मुझे बाहों में ले रहे हैं, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, बाबा मेरे में सारी शक्तियां भर रहे हैं, अनुभव करते जाओ, बाबा के हाथ में मेरा हाथ है, सूक्ष्म वतन में खड़े हैं, सूक्ष्म वतन में चल रहे हैं, बाबा और मैं सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दे रहे हैं, अनुभव करो बाबा के साथ का अनुभव। यही अनुभव ही हमें अंतिम पेपर में पांचवें डोनर बनाएगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ऐसी परिस्थितियां होंगी, ऐसे से, क्योंकि वातावरण इतना, लोग कहीं दब रहे हैं, कहीं मर रहे हैं, कहीं चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, कहीं दुखी हो रहे हैं, कैसे कैसे वो सीन होंगे, ये जब विश्व परिवर्तन होगा, सृष्टि परिवर्तन होगी, तो ये सारे सीन आने हैं, प्राकृतिक प्रकोप भी होंगे, इविल सोल्स के प्रकोप भी होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के अचानक के पेपर, और हो सकता है एक के बाद एक पेपर, एक के बाद एक पेपर, एक के बाद एक पेपर आता जाए, लेकिन उस समय अगर मैं खुद को ही नहीं संभाल पाऊंगी तो दूसरों को कैसे संभाल सकूंगी। इसीलिए उनका किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मीन्स उनकी कोई भी वाइब्रेशंस मेरे को हिला ना दे, नहीं तो थोड़ी सी परिस्थिति भी हमें हिला देती है। तो इसीलिए ये अभ्यास जितना ज्यादा से ज्यादा अभी करेंगे और यही कमाई ही हमारी साथ चलेगी। ओम शांति।
Bye.